तुलसीदास का काव्य वैशिष्ट। सिद्धार्थ शंकर राय। तुलसीदास मध्यकालीन कविता के शिखर पुरुष हैं। वे युगीन काव्य प्रवृत्तियों से भलीभांति परिचित थे। उन्हें लोक भाषा और संस्कृत की विभिन्न धाराओं का ज्ञान था। वे काव्यशास्त्रीय मूल्यों से वावस्तगी रखते थे, जिनसे कविता की उत्कृष्टता को मापा जाता था। आचार्य शुक्ल ने उनकी युगीन काव्य प्रणालियों का उल्लेख हिंदी साहित्य के इतिहास में किया है। नोटेड कामा। भाषा के पद्य स्वरूप को लेते हैं तो गोस्वामी जी के सामने कई शैलियां प्रचलित थी, जिनमें से मुख्य ये हैं। क, वीर गाथा काल की छप्पय पद्धति। ख, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति। ग, गंगा आदि भाटों की कवित्व सवैया पद्धति। घ, कबीरदास की नीति संबंधी वाणी की दोहा पद्धति, जो भ्रंश से चली आती थी। और अंग, ईश्वरदास की दोहे चौपाई वाली प्रबंध पद्धति। यूनाइटेड कॉमन। तुलसीदास की विशेषता यह है कि वे अपनी काव्य रचना में उन सबसे अलग शैली को अपनाते हैं। रामचरितमानस की प्रबंधात्मकता के लिए अवधी भाषा के साथ विभिन्न छंदों का सम्मिश्रण करते हैं, तो विनय पत्रिका और कवितावली के लिए अलग अलग भाषा और अलग रूप विधान को चुनते हैं। यह बात ध्यान देना योग्य है कि रामकथा को तुलसीदास ने 3 बार लिखा है और इन तीनों कथाओं में शिल्पगत विभेद अधिक है। एक ही कथा को 3 बार लिखना कवि की विराट सामाजिक संवेदना और कला की विभिन्न धाराओं में दक्षता का प्रमाण है। कविता के शास्त्रीय परिपाटी में हस्तक्षेप करते हुए वे मानस के मंगलाचरण में ही अपनी मंशा जाहिर कर देते हैं। वर्णनामार्थ संघानाम रसानाम छंद सामपी मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकम्। कविता का प्रभाव वर्ण शब्द अर्थ छंद और रसों के सम्मिलित होने से ही पड़ता है। यह विचार शास्त्रीय प्रणाली को ठीक ढंग से समझने वाले तुलसीदास के हैं, लेकिन लोक का गहरा प्रभाव समझने वाले उन्हें आकृष्ट करता है, क्योंकि लोक की स्वीकृति ही किसी कवि को महानतम होने का गौरव प्रदान करती है। शिक्षित व शास्त्रीयता के समानांतर लोक काव्य परंपरा भी चलती रही है। तुलसी को लोक काव्य की गहराई तथा प्रभाव का ज्ञान था। वे प्राकृत की प्रशंसा करते हैं। कलि के कभिन्न करके परनामा, जिन्हें वरने रघुपति गुण ग्रामा, जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। इसी प्रभाव के कारण वे संवेदनाओं को भाषाबद्ध करते हैं, और यहीं पर तुलसीदास किसी काव्य परंपरा के प्रभाव में भी दिखते हैं। प्राकृत कवियों की लोकधर्मी चेतना ही उन्हें लोक भाषा की ओर उन्मुख करती है। वे लोक भाषा के व्यवहार को ही सिद्ध कवि की विशेषता मानते हैं। भाषा बद्ध कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। मध्यकालीन कवियों की बड़ी विशेषता है कि वे आत्ममुग्धता और आत्मगौरव से दूर थे। वे लोग विद्या ददाति विनियम में विश्वास रखते थे। काव्यात्मक विनम्रता सभी कवियों में है। महाकवि के अहंकार से दूर वे किसी और में नहीं, खुद से ही होड़ लगा रहे थे। तुलसीदास ने महाकाव्य लिखने के बावजूद कवित्व विवेक के लिए प्रयासरत थे। अक्षर शब्द अर्थ अलंकार व रस के प्रभावों का ज्ञाता होने के बाद भी अनजान और अबोध होने की विनम्रता कविता की युग ग्राहकता को बढ़ा देती है। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव वेद रस वेद अपारा, कवित्व दोष गुण विविध प्रकारा, कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिखी कागज कोरे। यह सब कहना गलत अलग बात है कि लेकिन कवित्व विवेक का सबसे प्रभावशाली रूप तुलसीदास के यहाँ ही मौजूद है। कबीर भी कहते हैं कि मसी कागज छियो नहीं, कलम गहे नहीं हाथ। यह संभव है कि कबीर की दीक्षा प्रारंभ परंपरागत ढंग से न हुई हो, परंतु शब्द ज्ञान और काव्य कला का ज्ञान उनको नहीं था, ऐसा कहना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। यह उस दौर की विनम्रता के अलावा कुछ नहीं है। तुलसीदास कविता का बुद्धि से संयोग कराते हैं। बुद्धि को शामिल किए बिना कविता बालकोचित प्रयास मात्र साबित होती है। वे बाल स्वभाव की आड़ित्य चिरेखाओं के पक्षधर नहीं है। वे बुद्धि तथा भाव के सम्यक योग से संवेदना का विकास करते हैं। इस कविता में बुद्धि की आत्मनिष्ठता का प्रश्न नहीं उठता, अपितु आश्रयदाताओं की रुचि महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे प्रयासों की खिल्ली भी उड़ाते हैं। जो प्रबंध बुद्ध नहीं आदरही, सो श्रम बाद बाल कवि करही। अथवा तैसे ही सुन भी कवित्व बुद्ध कहीं, उपजही अनत अनत छवि लहही। तुलसी की काव्य कला का विकास संवेदनाओं के आरोह अवरोह में होता है। वे कविता के शास्त्रीय गुण दोषों के विवेचन को मुख्य आधार न मानकर लोक मंगल की भावना को प्रमुखता देते हैं। कविता का चाहे जो भी रूप हो उससे विराट एवं लोक मंगलकारी समाज निर्माण की ओर उन्मुख होना चाहिए। वे छंदों की योजना में काव्य की सार्थकता के आग्रही नहीं है। वे ध्वनि वक्रोक्ति रीति काव्य के गुण दोष के महत्व को जानते हुए भी वचन और शब्द की वक्रता से यथासंभव बचते हैं। भावुकता छंदों की जटिलता अलंकार योजना से अलग औचित्य निर्वाह वस्तु वर्णन को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भरति वदेश वस्तु भली भरनी, ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपनी काव्य कला के माध्यम से साधारणीकरण के सिद्धांत को प्रायोगिक प्रक्रिया में बदलना चाहते हैं। यही कारण है कि उनकी कविता व्याख्या के लिए काव्यशास्त्रीय सीमाओं को पार कर जाती है। कविता में लोक मंगल का पक्ष इतना प्रभावी होता है कि शास्त्रीय विधि विधान कमतर प्रतीत होने लगते हैं। वे शास्त्रीयता का लोक से समन्वय करके लोक का शास्त्र रच देते हैं। पूरे ने सघन चारु चौपाई जुगुति मंजुमति सीप सुहाई छंद सोरठा सुंदर दोहा सुई बहुरंग कमल कुल सोहा अर्थ अनूप सुभाष सुभावा सुई पराग मकरंद सुभाषा सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला ज्ञान विराग विचार मराला दुनि अवरेव कवित्त गुण जाति मीन मनोहर ते बहु जीव भांति अर्थ धर्म कामादिचारी कहब ज्ञान विज्ञान विचारी नवरस जप तप जोग विरागा ते सब जल चर चारु तड़ागा। तुलसी के काव्य में मानव जीवन के विविध भावों रूपों एवं क्रिया व्यापारों का चित्रण मिलता है। रति हास्य जुगुप्सा निर्भीत वात्सल्य आदि सभी स्थायी भावों को उनके सजातीय भावों के साथ देखा जा सकता है। इनके यहाँ भाव लोकसत्ता की मर्यादा से बाहर नहीं है। उदाहरण के लिए राम की बाल लीलाओं को ले सकते हैं। तुलसी ने बालक राम के अलग अलग चित्र कवितावली विनय पत्रिका और रामचरितमानस में निर्मित किया है। राम की बहुकोणीय बाल छवि मानस में इस प्रकार है। भोजन करत बोल जब राजा नहीं आवत तजि बाल समाचा कौसल्या जब बोलन जाई ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराई निगम नेत सिख अंत न पावा ताहि धरय जननी हठि धावा दूसर धूरी भरे तनु आए भूप है विहस गोद बैठाए। किसी भी कवि के लिए किसी घटना या परिवेश का चित्रांकन चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, बल्कि यह कहें कि परीक्षा की घड़ी होती है। तुलसीदास ने कविता की शैली का भी सफलतापूर्वक निर्वाह किया है। राम के बाल लीलाओं के साथ साथ श्रृंगार वर्णन में भी कवि की लोकापेक्षी मर्यादा का प्रभाव देख सकते हैं। वे मुस्कान भावों के तनाव से संबंधों का हवाला प्रस्तुत कर देते हैं। तुलसीदास का सौंदर्य बोध मर्यादित और उच्च स्तरीय है। वह सौंदर्य को देख कर न मौन होते हैं और न ही वाचाल। वे निर्लिप्त सौंदर्य चित्रण के सबसे बड़े कवि हैं। उनकी निर्लिप्तता ही काव्य में मर्यादा भाव की रक्षा करती है। तुलसीदास का सौंदर्य चित्रण उत्सुकता पैदा करता है, कौतूहल नहीं। उद्यान में विचरण करती सीता के सामने राम और लक्ष्मण के सौंदर्य का वर्णन एक सखी करती है। श्याम गौर की मैं कहो बखानी किरा अनयन नयन बिनु पानी। यह है तुलसी का सौंदर्य बोध। उन्हें सीता के सौंदर्य वर्णन के समय कवि कहे जाने के खतरे का भान भी है, लेकिन इसी प्रसंग में वे कलम कारीगरी और काव्य भंगिमा के बहुकोणीय होने का प्रमाण भी देते हैं। वे सीता के सौंदर्य की तुलना न करके भी एक माना गढ़ देते हैं। सिय शोभा नहीं जाए बखानी जगदम्बिका रूप गुण खानी उपमा सकल मोहे लघु लागी प्राकृत नारी अंग अनुरागी सिय बरनीय ते उपमा देई कुकवि कहाय अजस को लेई जो पटी तरई सिय समसिया जग असि युवति जहाँ कमनिया किरा मुखर तम अधर भवानी रति अति दुखित अतनु पति जानी। इन चौपाइयों में सरस्वती पार्वती और रति तीनों को सीता से हीन प्रदर्शित करने के लिए तीनों के साथ लघु वर्णों की योजना की गई। हालांकि यह साभिप्राय प्रस्तुत किया गया वर्ण विन्यास नहीं है। तुलसीदास को भाषा पर अपार अधिकार था। मध्ययुग का कोई अन्य कवि भाषा की इतनी ताकत के साथ सामने नहीं आया है। शब्द भंडार की विशालता के साथ ही कथ्य के अनुकूल वाक्य विन्यास शब्दों का चयन लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग नाथ सौंदर्य और चित्रमयता उनकी काव्य कला के प्रमुख विशेषताएं हैं। भाषा और रसपूर्ति का एक अन्य उदाहरण भय के रूप में देख सकते हैं। लपट कराल ज्वाल जाल दहु दिखी, धूम अकुलाने पहचाने कौन काहिरे, पान को ललात बिल जात जरे गई जात, अरे पाई माल जात भ्रात तू निवाहिरे। तुलसीदास ने किसी अलंकार या छंद का प्रयोग प्रदर्शन मात्र के लिए नहीं किया, कहीं कहीं पात्र या स्वभाव की वंदना के लिए, कहीं कहीं किसी भाव के पूर्ण उद्दीपन के लिए, कहीं कहीं किसी सूक्ष्म भावना को पूर्ण रूप से मूर्त करने के लिए, अथवा विभिन्न मनय स्थितियों के चित्रण के लिए प्रयोग में लाया गया है। उनके यहाँ उपस्थित अलंकार एक विशेष प्रभाव उत्पन्न करता है, वह अलंकार बाद में है उसका प्रभाव पहले है। इसी प्रभाव उत्पादक के कारण जिस घटना वस्तु पात्र स्थान या दृश्य का वर्णन किया गया है वह उसी रूप में दृश्यमान होता है। दृष्टांत का यह उदाहरण अलंकारों की प्रभाव उत्पादकता को स्वयमेव स्पष्ट कर देता है। सहज सहल रघुबर वचन कुमति कुटिल करी जान, चलई जोंक जल वक्र गति यद्यपि सलिल समान। सहज वाक्य विन्यास के साथ जीवन की सरलता और स्वाभाविकता तुलसी काव्य के प्राण तत्व हैं। यह सहजता एवं सरलता उनकी संवाद योजनाओं में भी दिखती है। संवाद योजनाओं की अप्रतिम सफलता का कारण भी यही है। भारद्वाज यागवल्क संवाद, उमा शंभु संवाद, गरुण काक भुसुंडी संवाद, गोसाई और भक्त संवाद के साथ लक्ष्मण परशुराम संवाद, अंगद रावण संवाद आदि प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त हुए हैं।